ओम शांति।
आज का विषय बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत गहरा विषय है। चेहरे और चलन द्वारा सेवा या चेहरे और चलन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता। अगर हम इसके स्थूल अर्थ में जाएं तो चेहरा इसे कहते हैं ना, चेहरा इसे कहते हैं, चलन माना कर्म। तो हम में से एक व्यक्ति अधिकतर ज्यादातर कितने लोगों के संबंध संपर्क में रहता है, कितने संबंध संपर्क में रहता है? जैसे 100 लोगों के संबंध संपर्क में, घर वालों के बाहर ऑफिस में जाता है कहीं, कोई 100 नहीं तो 1000 लोगों के संबंध संपर्क में रहता होगा। अगर हम चेहरे से कहें प्रत्यक्षता होगी बाबा की या सेवा होगी तो कितने लोगों की सेवा होगी? 100 की, 200 की, 500 की, 1000 की होगी ना सिर्फ। और चलन मना कर्म, कर्म भी हमारे कितने लोग देखते हैं? कि चेहरे से अगर देखा जाए तो हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना? और चलन से भी बहुत लोगों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा का तो हर शब्द ही गुह्य होता है ना, उसमें बहुत गहराई होती है, महावाक्य में बहुत गहराई होती है। चेहरा किसका दर्पण है? मन का दर्पण है ना, कहते हैं मन का दर्पण है चेहरा, है ना। मन में जो भी विचार उठते हैं, जो भी भावनाएं उठती हैं, वो चेहरे पे दिखाई देती है। जो भी हमारी वृत्ति एटीट्यूड होता है किसी के प्रति, चेहरे पे दिखाई देता है ना। किसी व्यक्ति को हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं तो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है ना। माँ का एटीट्यूड, माँ की वृत्ति बच्चे के प्रति क्या है, माँ बच्चा तुरंत पहचान लेता है ना। और माँ बच्चे के दिल में बच्चे की वृत्ति क्या है माँ के प्रति, वो तुरंत पहचान देती है ना। Isn't it? ये बात ठीक है। तो ऐसे ही हमारी स्मृतियां भी हमारे चेहरे के द्वारा प्रलक्षित होती है ना। तो ये जो मन है ना, मन ही हमारा चेहरा है। जब बाबा कहते हैं ना चेहरे के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करो, और ये चेहरा ही हमारा, ये जो मन है ये हमारे चेहरे, चेहरा तो एक फेस रख सकता हो गया ना। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं इंग्लिश में, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। कि हमारा मन में क्या चल रहा है वो चेहरे से पता लगता है। कोई चीज छुपाए भी नहीं छुप सकती है ना, जो मन में है वो चेहरे पे दिखाई दे ही जाती है ना। तो अगर हमारा मन, अपर मन कैसा हो? मन हमारे 3 तरह के हैं। एक तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन माइंड है, दूसरा हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस, और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। 3 माइंड है। अब इसके द्वारा तो सेवा नहीं हो सकती है, हो सकती है? एक तो जो ग्लास होता है उसकी उसकी क्या विशेषता होती है? ट्रांसपेरेंट होता है ना, आर पार दिखाई देता है। किंतु अगर सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरा होता है? सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादातर नेगेटिव भरा होता है, और हमारे अनकॉन्शियस माना सबकॉन्शियस में इस जन्म के पाप कर्म भरे होते हैं। इस कर्म जन्म में हम जो कर्म कर रहे थे और हमसे ठीक नहीं हुए, गलत हुए, और उसको हमारा कॉन्शियसनेस स्वीकार नहीं करती है, वो फाइलें सारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है इस जन्म की। और पिछले 62 जन्मों में जब हमने पाप कर्म किए, द्वापर युग से, जब से द्वापर शुरू हुआ, उनमें हमारा अनकॉन्शियस माइंड रहता है। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को सामने दिखाई नहीं देने देता है। तो एक होता ना ग्राउंड ग्लास होता है, ग्राउंड ग्लास बाथरूम्स में लगा होता है, ग्राउंड ग्लास मोटा ग्लास होता है, उसमें से आर पार दिखाई नहीं देता, लाइट तो दिखाई दे जाती है किंतु आर पार दिखाई नहीं देता है ना। तो अभी तो हमारी हालत ग्राउंड ग्लास जैसी बन गई ना। तो ग्राउंड ग्लास के द्वारा हम कुछ सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जरूर जब चेहरे और चलन की बात बाबा कर रहे हैं, तो चेहरे और चलन का मतलब है कि बाबा कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या करो, साफ कर दो, है ना, स्वच्छ बना दो, पवित्र बना दो, है ना, और अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी खत्म कर दो, फिनिश कर दो। क्योंकि फरिश्ते जो होते हैं उनका उनका 100% माइंड कॉन्शियस होता है। फरिश्ते जो होते हैं उनका माइंड कैसा होता है? 100% मन कॉन्शियस होता है। देवताओं का मन भी क्या होता है? 100% मन कॉन्शियस होता है। क्योंकि स्वप्न कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? सब कॉन्शियस माइंड, चित्त से आते हैं। सब कॉन्शियस माइंड को हिंदी में चित्त कहते हैं, चित्त है ना। तो वो स्वप्न कहां से आते हैं? सब कॉन्शियस से, और कभी कभी अनकॉन्शियस माइंड से भी आ जाते हैं। इस जन्म की घटना नहीं होती, किसी पिछले जन्म की घटना में कभी कभी स्वप्न में आ जाती है। तो सबकॉन्शियस 90% स्वप्न सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं और 10% स्वप्न अनकॉन्शियस माइंड से भी आ जाते हैं। किंतु अगर हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा अर्थात हमारा मन सारे विश्व तक हम ट्रांसपेरेंट बन जाए, क्योंकि वो स्थिति फरिश्ता बनने के बाद ही आएगी जब हमारा चेहरा और चलन बाकी प्रत्यक्षता करेंगे, राइट। अर्थात इसका मतलब कि हमें फरिश्ता बनना पड़ेगा। क्या कहेगा, क्या बनना पड़ेगा पहले? तब हमारा हम चेहरे और चलन, चलन में ना कर्म, तो जो मन में होता है वही तो कर्म में आता है। जो हम सोचते हैं फिर वही बोलते हैं और फिर वही कर्म करते हैं। तो जड़ क्या है? सोच विचार है ना। तो अब हमको इसको गहराई से समझना होगा कैसे हम अपने आप को परिवर्तन करें। मतलब ये कहें दूसरी भाषा में कि 63 जन्मों के विक्रम विनाश करने के बाद ही हम क्या बनेंगे? तब ही हम अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा कि आपको अभी चलते फिरते म्यूजियम बनना है। अभी 3-4 दिन पहले की मुरली थी ना, बाबा ने कहा था कि आप गली गली में सेंटर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में विनाश होगा, अपने घर से बाहर निकल नहीं सकेंगे, है ना। चलो अब तो घर, अभी तो गली गली में तो आपके आपके हाथ हाथ में, सबके हाथ में ही सेंटर आ गया, नहीं आ गया? सबके हाथ में सेंटर है क्या? नहीं है? सबके हाथ में सेंटर है ना? नहीं, ये सेंटर नहीं चलता फिरता सेंटर है ना, पर ये भी टेम्परेरी है, 2-3 साल का है ना, ज्यादा देर नहीं चलेगा ना, इसका काम भी पूरा होने वाला है, ये भी ऑनलाइन सब खत्म हो जाएगा ना? अभी तो सिर्फ एक ही लाइन रहेगी। कौन सी लाइन? वाइसलेस लाइन रहेगी ना, निर्विकारी लाइन, पवित्रता की लाइन। जो पवित्र होंगे वो उनके ही द्वारा ही सेवा हो पाएगी, है ना, जो संपूर्ण पवित्र होंगे। तो ऑनलाइन भी अभी 2-3 साल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, ठीक है। अभी तो हम में से हर एक बच्चे को चलता फिरता म्यूजियम बनना है, चलता फिरता सेंटर बनना है, मोबाइल सेंटर बनना है। ये तो मोबाइल वैसा है ना, इस पे तो खर्चा भी होता है ना, इस पे तो वैसे भी नुकसान भी करता है। अगर पास में रखा है 6 फुट कम से कम दूर रहना चाहिए मोबाइल हमसे ना, नहीं 6 फुट हमसे 6 फुट से नजदीक है तो ये हमें नुकसान करता है ना, हमारी जो है। मैं तो हमेशा 6 फुट दूर रखता हूँ, अभी तो नहीं रख सकता कि, तो वैसे मैं हमेशा घर में मेरे से 6 फुट दूर रहता है, बहुत रेयरली मैं फोन उठाता हूँ। तो ये तो हमारी एनर्जी को खत्म करता है, सैप करता है ना ये वाला मोबाइल। तो आप कान में लगा के सुन रहे हैं कुछ, इसमें से अगर आप मुरली भी सुन रहे हैं तो आपकी एनर्जी को कम भी कर रहा है साथ साथ, है ना। कुछ सुन रहे हैं कुछ नहीं सुन रहे हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ नहीं रही, ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए कागज पर मुरली पढ़ना ज्यादा अच्छा है। आपकी मुरली आपके पास जो प्रिंट आती है ना, ये आप इंटरनेट से निकाले, उसको पढ़ना बहुत शक्तिशाली अनुभूति देता है बजाय के मोबाइल से मुरली पढ़ना, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अभी हम में से हरेक को क्या बनना है? चलता फिरता सेंटर बनना है, चलता फिरता म्यूजियम बन रहा है, और हमारा जो नयन है ना, ये क्या बन जाए? ये टेलीविजन बन जाए ना, दूरदर्शन बन जाए ना। तो जो कुछ हम सोचेंगे वो इनके द्वारा वो देख सके, सामने वाले भक्त, है ना। अभी हम अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को देख रहे हैं तो उनको भी दिखाई देना शुरू हो जाए। अगर हम अपने आदि देवी देवता स्वरूप को देख रहे हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, तो उनको हमारे हमारे मस्तक के द्वारा, हमारे नयनों के द्वारा उनको भी देवी देवता स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। हमारे मध्य पूज्य स्वरूप को देख रहे हैं तो कैसे हमारी पूजा हो रही है, अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी के रूप में, तो उनको वो भी वो साक्षात्कार हो जाए ना। जैसे चित्र बदलते रहते ना, टेलीविजन में भी चित्र बदलते रहते ना, फिल्म में चित्र बदलते रहते ना, तो वो चित्र उनको बदलते चलचित्र बन जाए ना। ये चित्र बदल गया, अभी देखा थोड़ी देर चित्र बदल गया, फिर थोड़े जो मैं चिंतन करूं वो मेरे चेहरे से दिखाई देना शुरू हो जाए, मेरी आंखों से दिखाई देना, मेरे मस्तक से दिखाई देना शुरू हो जाए। जो मैं चिंतन करूं, जैसा विचार मेरे अंदर आए, जैसी भावना आए, उनको दिखाई देनी शुरू हो जाए, उनको अनुभव होने शुरू हो जाए। दिखाई भी देने की चीज नहीं कि दिखाई दे, ऐसे कोई कोई आंख में मेरी फोटो लगे देखे तो अंदर तुरंत देवता तुरंत खड़ा हुआ होगा, है ना, किंतु उनको अनुभव होना शुरू हो जाए, है ना। दिखाई देने का मतलब अनुभव होना है ना, तो अनुभव होना शुरू हो जाए। इसी तरह से मैं अगर अपने संगम के ब्राह्मण स्वरूप का चिंतन करूं, सूक्ष्म वतन में बैठा हूं, बाप दादा की गोद में, बाबा मुझे बहुत प्यार से अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहे हैं, तत्त्व रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान समझा रहे हैं, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, और ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता, देवता से बीजरूप स्थिति बना करके मुझे अपने साथ वापस स्वीट साइलेंस होम ले जा रहे हैं, वाया सूक्ष्म वतन, तो ये उसको साक्षात्कार होना शुरू हो जाए ना। और फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कि मैं फरिश्ते के रूप में कैसे बाबा के साथ मिलकर सारे विश्व की सेवा कर रहा हूं, तो ये जो है जैसे हमारे ये चलते फिरते स्थिति बन जाए, तो इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा आत्माओं को साक्षात्कार होगा। और फरिश्ता की रेंज क्या होती है, फरिश्ता की रेंज क्या होती है, मैं यहां पर हूं और मेरा कोई व्यक्ति जो मतलब कोई व्यक्ति अमेरिका में है, तो उसको साक्षात्कार हो सकता है यहां बैठे बैठे, हो सकता है, या सामने वाले कोई होगा, दूर तक भी हो सकता है ना, हजारों किलोमीटर भी हो सकता है। तो उसी बात को हम गहराई से समझेंगे कि आज कैसे हमारे चेहरे और चलन द्वारा, चलन ना कर्म है ना, कर्म कौन कौन से होते हैं, हमारा देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, सैर करना, लोगों से व्यवहार करना, संबंध संपर्क में आना, कुछ भी जो हम करते हैं सुबह से, ब्रश करना भी है ना, शेव करना भी, जो भी कर्म हम करते हैं, जैसे देवी देवताओं का हर कर्म कैसे दिखाते हैं, श्रीनाथ द्वार में दिखाते हैं ना, ब्रश करने का भी उसका साक्षात्कार दर्शन होता है ना, कृष्ण जी ब्रश करते होंगे क्या, आप क्या समझते हैं वहां कोलगेट का ब्रश होगा क्या, वहां पे पेप्सोडेंट कोलगेट होगा क्या वहां पे, नहीं ना, मतलब उनका ब्रश करना भी दिखाते हैं ना, सब कुछ करना दिखाते हैं ना, उनका उसका भी दर्शन कराते हैं ना। तो ये जो है हमारी हर हर कर्म एक कला के रूप में दिखाई दे ना। जब आत्मा सातवें नदी से भरपूर हो जाती है तो हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। तो वो कमल कहते हैं, कमल नयन, कमल मुख, कमल करण, कमल हस्त, कमल पैर, है ना, एक एक कोशिका हमारी बॉडी की वो भी कमल के समान न्यारी प्यारी, कहीं भी फंसी हुई नहीं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, है ना, हर स्मृति हर सेल में स्मृति हो कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और ड्रामा रूपी ड्रामा क्या है। तो पहले हम इसकी गहराई में चलें, एक चीज हम समझ लें कि हमें जो हमें सही मायने में अगर हम बनना चाहते हैं तो बाबा का बताई हुई विधि, जो बाबा ने हमें विधि बताई है उसको हम फॉलो करें, राइट। होता क्या है कि हम लोग बचपन से ही, बचपन मतलब द्वापर युग से ही, इस कलयुग मतलब क्या था ना, क्या कहें उसको, नरक के बिगनिंग से ही हमें क्या आदत पड़ गई है, मिक्सोपैथी करने की आदत पड़ गई है ना, मिलावट करने के संस्कार हो गए। पहला मिलावट हमने क्या की, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया है ना, डाला नहीं डाला, और फिर क्या किया हमने, ज्ञान तो दिया था शिव बाबा ने, और हमने नाम क्या डाला, श्री कृष्ण का नाम डाला, और देवताएं जो थे, देवताएं क्योंकि हम पतित बन गए थे तो हमने मंदिर कैसे बनाए, हमने भी देवताओं को पतित बना दिया है ना, कि वो भी गृहस्थी थे तो भी विकार थे, वहां भी विकार थे, नहीं सत्युग में हिरण्यकश्यप को ले आए और त्रेता में किसको ले आए, रावण को ले आए, है ना। मतलब हमने उनको जैसे हमारे साथ था वैसा ही हमने उनको वहां भी बना दिया। और फिर और नीचे आए तो हमने क्या किया, देवताओं को क्या कर, बंदर का मुंह लगा दिया, देवताओं को क्या लगा दिया, हाथी का मुंह लगा दिया, नहीं लगाया। हनुमान को क्या लगाया, बंदर का मुंह। और गणेश को क्या लगा दिया, हाथी का मुंह लगाया ना, गिरे नहीं गिरे, है ना। और फिर क्या किया हमने बाद में, जैसे जैसे हमारी मनोवस्था होती गई वैसे वैसे हम गिरते चले गए। और हमने वैसा ही भगवान को देवी देवताओं को समझना शुरू कर दिया, है ना। और वैसे ही हमने अपने उनकी पूजन उसी अपने स्वरूप में करनी शुरू कर दी। गीता की व्याख्या, रामायण की व्याख्या, महाभारत की व्याख्या, जो भी हमने की वो सारी सारी अपने समय के अनुसार, हमारी अपनी सोच के अनुसार हमने कर दी। इसलिए बाबा कहते हैं इन शास्त्रों में कुछ भी रखा नहीं है, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, उपनिषद हो, वेद हो, सब में मिलावट है। सब में क्या है, आटे में नमक के समान सत्य है। इसलिए इनको पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। तो बाबा ने कहा पहली तो बात जो है, अगर आप चाहते हैं इस रास्ते पे चलना और सचमुच अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करना चाहते हैं, मनसा सेवा करना चाहते हैं, सारे विश्व की सेवा करना चाहते हैं, अभी तो साधन ही नहीं है। अभी तो कोरोना ने इतना बढ़िया काम कर दिया है, आप कहीं जा ही नहीं सकते हो ना। आप पंजाब से यहाँ आ गए, गुजरात से यहाँ आ गए, है ना। भविष्य में ये भी होगा नहीं पता नहीं, ठीक है, कुछ पता नहीं ना, क्या होगा पता नहीं ना, बट डजंट मैटर। हमको तो पता है कि विनाश होने वाला है, सत्युग आने वाला है ना, हमको तो ये पता है, हमें डर नहीं है, हम तो निर्भय है ना, हमें कोई डर की बात ही नहीं है। तो पहले जो अगर हम चाहते हैं इस रास्ते पर चलें, तो हमें तीन बातें बहुत ध्यान रखनी है। पहली बात तो मतलब हमें बाप से करंट खींचनी पड़ेगी। करंट खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन बातें चाहिए। पहली तो हमें ज्ञान की गहराई हमारी बुद्धि में, ज्ञान की महीनता हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। एक तो ज्ञान होता है मोटा मोटा ज्ञान, हमें समझ लिया, मुरली पढ़ ली, उसका हमने मंथन भी नहीं किया, मनन, क्योंकि बाबा की जो मुरली है ये चार पेज की जो मुरली है, आज तो तीन पेज की है, लगभग साढ़े तीन पेज की है। तो ये साढ़े तीन पेज की इसमें बाबा के लगभग 15 लाख बच्चे हैं जो रेगुलर मुरली सुनते हैं, है ना। तो 15 लाख बच्चे, और 15 लाख बच्चों का इस साढ़े तीन पेज की मुरली में सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसमें। सभी तरह के लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, IAS भी हैं, है ना, शिक्षा चलाने वाले भी हैं, मजदूर भी हैं, है ना। बाबा के सब तरह के बच्चे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, है ना। वो सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, पर इसी साढ़े तीन पेज में सबकी समस्याओं का हल है, सभी की। तो जो आपके लिए उसका अर्थ है, मेरे लिए कुछ उसका और अर्थ है। मेरी समस्याओं के हिसाब से, मेरी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, मेरे पाप कर्मों के हिसाब से, मेरे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के हिसाब से मेरा अपना हिसाब किताब है, और उसके लिए मेरा मीनिंग उसी लाइन का, उसी महावाक्य का मीनिंग मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है, हर एक के लिए अलग अलग है। तो हमें समझना है कि बाबा का जो एक एक लाइन है ना महावाक्य, उसमें बहुत बहुत गुह्यता है, समय है, सीक्रेट्स है, बहुत गहराई है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत महीन है, कहीं राज इसमें समय में सूक्ष्म है। सूक्ष्म माना आप मोटी मोटी बुद्धि से पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा, और फिर इसमें ये बहुत अमूल्य है। तो ज्ञान की जो आपकी समझ है ना, बहुत गहराई की होनी चाहिए। अगर मोटा मोटा समझेंगे ना, मोटी मोटी मुरली पढ़ ली, चलो आपने पहले आरती गाते थे, आप मुरली सुन ली, चलो ना, पहले मंदिर में जाते थे, आप चलो सेंटर में चले गए मुरली सुन के, आप फिर मुरली सुन की वहां रही, शाम को एक बार आया, अरे बाबा को तो गुड नाइट तो कर लो, सोने के पहले गुड नाइट करी सो गए, है ना। अमृत वेला उठे, मुरली थोड़ी सी थोड़ा किया, थोड़ा झटके, थोड़ा सा योग किया, थोड़ा सा लगा, नहीं लगा, चलो जी 4:45 हुए, ओम शांति। फिर नहा दो, फिर थोड़ा सो गए, फिर उठ के नहा दो के तैयार होके मुरली सुन ली, आधा मुरली इधर ध्यान इधर है, थोड़ा आधा इधर है, थोड़ा बीच में 10% बीच में है। इससे कोई हमारे विक्रम विनाश नहीं होते। मेन बात तो है जब चेहरे और चरण के द्वारा प्रत्यक्षता का मतलब है हमें 63 जन्मों के लड़के अर्थात पहले कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत बन के, फिर विक्रमा जीत बन करके, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर अपने, फिर हम ऐसी स्थिति में आएंगे जब हमारा मन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाएगा और तब 100% मन कॉन्शियस हो जाएगा, तब हमारी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर 100% आएगी। अभी जो हमारी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर है सिर्फ 5-8% है। आप देखो क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड ही सिर्फ 5-8% है। आप सुबह प्लान बनाते हो हम आज इतने बजे, हम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक इतनी देर बाबा को याद करेंगे, 7 से 8 बजे इतनी देर बाबा को याद करेंगे, 8 से 9 ये करेंगे, ये सामान रखेंगे, 9 से 10 ये सामान रखेंगे, है ना, बनाते ना चार्ट, बनाते ना उन्नति का चार्ट बनाते हैं, आज हम ये करेंगे मुरली आज 10 बार पढ़ेंगे, और शाम को देखो तो कितने परसेंट होता है, शाम को 10 बजे 9:30 बजे चेक करो तो कितना परसेंट फॉलो होता है बताइए, सच सच बताओ 10% ही फॉलो हो पाता है, मतलब 8 से 10 5 से 10% ही फॉलो हो पाता है। लगन तो लगाई थी, बाप से प्रतिज्ञा भी, बाबा बार बार मुरली में कहता भी है, बच्चे बहुत सुबह सुबह तो बहुत बहुत बाबा को भी खुश कर देते हैं, बाबा आज मैं ऐसे करके दिखाऊं, आज शाम तक तो मैं प्रत्यक्ष कर दूंगा, आज शाम तक तो सब विक्रम विनाश, और फिर शाम को देखो तो वहीं के भी खड़े हैं, हाथ पैर तो बहुत मारे कि तो परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, है ना। तो ये जो है, ये जो पुरुषार्थ है, ये तो एक मोमबत्ती जलाने के वजह से है, जैसे जो आप पुरुषार्थ है अमृत वेला कर लिया, मुरली पढ़ लिया 1-2 बार और फिर उसके बाद शाम को बाबा गुड नाइट करके सो गए, तके तके टीवी देखा थोड़ी देर, थोके आके देख के खबर देखी, मोदी ने क्या कहा, लालू यादव तो भाई नहीं, राहुल गांधी ने क्या बोला, उसने सुना के, है ना, और बस अपना गुड नाइट करी बाबा को तके तके मन से, न पोता मिल दिया न किया, बस सो गए। तो ये तो एक मोमबत्ती योग है, कैंडल लाइट योग है, कैंडल लाइट होती ना, कैंडल की लाइट मोमबत्ती जला के आप दूध गर्म कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हो, दूध में कीटाणु होते हैं ना, कच्चा दूध होता है तो कीटाणु होते हैं, एक मोमबत्ती जला दो, स्टैंड लगा के उस मोमबत्ती के ऊपर भगोना रख दो 1 लीटर दूध, कितने घंटे में गर्म होएगा, शाम तक तो हो जाएगा, नहीं सुबह रखोगे शाम तक तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ दूध हो जाएगा तो खराब ही है ना, शाम तक रखे गर्म तो होगा, मोमबत्ती तो पिंगल खत्म हो जाएगी, कैंडल लाइट डिनर हो सकता है, कैंडल लाइट दूध तो गर्म नहीं हो सकता ना, है ना। हाँ तो ये ध्यान रखने की बात है कि हमको ध्यान रखना है कि इस तरह के योग से कुछ फायदा नहीं है ना, हमें बनना है सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी और निरंतर योगी। अगर हम चाहते हैं हमारे चेहरे और चरण द्वारा प्रत्यक्षता हो तो पहले तो हमें इस ज्ञान की बहुत गहराई से समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ समझ होनी चाहिए, ABCD क्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, और ड्रामा क्या है, सिस्टर पे ड्रामा क्या है, इस ड्रामा में मुझे आत्मा का क्या पार्ट है, दूसरी आत्मा का क्या पार्ट है, कर्मा फिलोसफी क्या है, राजयोग कोर्स को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए, सुनना अलग बात होती है, समाना अलग बात होती है, तो वो हमें जब प्रॉपरली कर लेते हैं, और फिर इसके बाद रेस्ट चाहिए, अवेयरनेस माना सारा दिन, श्वासोश्वास, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में, संबंध संपर्क में, व्यवहार में, ये चलता रहे कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ब्रश कर रहे हो, कौन कर रहा है, मुर्दे का भी ब्रश करते हैं क्या, मुर्दे ब्रश करते हैं क्या, कौन कर रहा है, आत्मा कर, खाना खा रहे हो, कौन खा रहा है, मुर्दे खाते हैं खाना कभी क्या, नहाते हैं कभी मुर्दे अपने आप, कुछ भी करो, साधारण कॉम कर रहे हो, कंगी कर रहे हो, सिर्फ मुंह पे क्रीम लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, कभी मुर्दे आपस में मिलते जुलते हैं क्या, किसी से बातें क्या बोलते हैं क्या मुर्दे? ऐसे अपने आप से चल, चल हर श्वास में ये अवेयरनेस, मैं कौन हूं, अगर मैं आत्मा हूं तो परमात्मा मेरे साथ कंबाइंड है ही है, क्योंकि परमात्मा की करंट तो यहां तक पहुंची हुई है, मैं इसके अंदर बैठा हूं, इंसुलेटेड मेटीरियल रबड़ के अंदर बैठा हूं, अगर मैं इससे बाहर आऊं तो उसकी करंट मुझे तुरंत आनी शुरू हो जाती है। और फिर आत्मा की, परमात्मा की और एक एक संबंध की गहराई, एक एक संबंध की महसूसता, बाद से मेरे क्या क्या संबंध है, पहले समझ, फिर अवेयरनेस, फिर महसूसता, महसूसता मतलब रियलाइज, और उसके बाद अनुभूति। बिना महसूसता के कभी भी अनुभूति नहीं होती है, अनुभूति तभी होती है जब हम उसको पहले क्या कर लेते हैं, महसूस करते हैं। महसूसता के बाद एक्सपीरियंस, एक्चुअली महसूसता क्या है, एक तरह का एक्सपेरिमेंटेशन है, प्रयोग है। जैसे सपोज आपको, आपको किसी से आपका संबंध में गड़बड़ है, किसी व्यक्ति से, या सपोज पति पत्नी की आपस में ठीक से बनती नहीं है, रोज झगड़ा हो जाता है, तो आज आप क्या करो, रियलाइज करो, परमात्मा की जो अवेयरनेस तो आ गई कि बाप क्या कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूं, टीचर हूं, माता पिता, शिक्षक, सगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, सब कुछ हूं मैं तुम्हारा, और उसको आप गहराई से अनुभव कर लो, ठीक है। अब ड्रामा में है कि आपका हिसाब किताब किसी आत्मा से है, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकता है ना। अब वो आपके सामने आया आपका, वो आपको डिसलाइक करते हैं, अब महसूस क्या करना है कि बाप कहता है मैं तुम्हारे सदा साथ हूं, हर समय साथ हूं, हर संबंध से साथ हूं, हर जगह साथ हूं, तो बाप को बुला लो अपने साथ, बाप को अपने साथ कंबाइंड कर लो, और कंबाइंड करके आप देखो, बाबा तो है, बाबा तो कौन है, हर संबंध से आपके साथ है, माता पिता, टीचर, सतगुरु, तो आपको कौन सा रूप चाहिए, अभी साजन का रूप चाहिए, मान लीजिए साजन का, सजनी का रूप चाहिए, तो बाबा को सजनी के रूप में साथ में कंबाइंड कर लो। अब वो जो लौकिक सजनी है ना, लौकिक साजन है, अब वो क्या करेगा, अब देखो आप अंदर से बिल्कुल उसके लव में खो जाओ, लवलीन हो जाओ, तो आपका चेहरा ऐसा बन जाएगा कि उसको भी लगेगा ये बहुत लवलीन है, मेरे को बहुत प्यार से देख रहा है ना, देख रही है ना, क्योंकि आप लवलीन तो किसी और के प्यार में हो, है ना, और आप कुछ बोलोगे नहीं तो क्या होगा, वो अपने आप ही देखोगे, ये आप एक्सपेरिमेंट किया ना, आपने रियलाइज महसूस किया, बाप के साथ वो संबंध महसूस किया ना, तो क्या होगा, अब आपको एक्सपीरियंस होगा कि देखो ये भी ठीक हो गए ना, अब एक बार अनुभव हो गया तो प्राप्ति क्या हो गई, अब प्राप्ति हो गई, घर में शांति हो गई, राइट, अब प्राप्ति हुई, अब आपने इसको कल भी यूज किया, परसों भी यूज किया, तरसों भी यूज किया, फिर आपने जब एक बार प्राप्ति कर ली तो फिर और संबंधों में भी यूज करके, जहां जहां प्रॉब्लम होती है वहां भी आप अनुभव करके देख रहे हैं, पिताजी आपके बहुत गर्म स्वभाव के हैं, अब पिताजी के सामने जाते तो पारलौकिक पिता से कंबाइंड हो जाओ, अलौकिक पिता से कंबाइंड हो जाओ, और देखो वो कैसा प्यार करता है, उसके प्यार में आप, पिताजी आपको डांट रहे हैं तो पिताजी के डांट रहे हैं आप आराम से ऐसे ऐसे करके, हाँ जी ऐसे बाबा को हाँ जी हाँ जी करते ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो फिर ये लड़का तो सुधर गया है ना, तो बस है ना, तो ये रियलाइज, ये है महसूसता, है ना, महसूसता, और उससे अनुभूति होगी, उससे अनुभव होगा आपको कि बाप की कितनी अथॉरिटी है, खाली कहने के लिए बाप नहीं है, कहले खाने के लिए, कहने के लिए मां नहीं है, टीचर नहीं है, सतगुरु नहीं है, बंधु नहीं है, बड़ा भाई नहीं है, बड़े भाई के रूप में बाबा कहता है मुझे सारा बोझ अपना दे दो, लौकिक जिम्मेवारी, लौकिक जिम्मेवारी मुझे दे दो, तुम छोटे बच्चे हो ना, ला मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा बस्ता पकड़ के चलता हूं, है ना, तुम सारा सिर्फ मेरे सिर पे बोझ रख दो, मैं ले जाऊंगा, तुम मस्त होकर चलो, खेलो कूदो, मस्त रहो, तो अपना सारा बोझ दे दो ना उसको, दोस्त है, अपने सारे मन की टेंशन से शेयर कर लो ना, सारी टेंशन को शेयर कर दो, तो ये अवेयरनेस आपको लगातार जब होगी, लगातार की, कहते हैं ज्ञान चिता, पहले हम काम चिता पे थे, आधा कलप हम काम चिता माना, देही दृष्टि, हम एक दूसरे को देह से देखते थे, देह से ही रिगार्ड देते थे, देह से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, देह से देह के गुणों में ही हम देखते थे, देह की विशेषताओं में खोए रहते थे, है ना। और इसी को काम विकार कहते हैं। ये काम चित्ता थी, रात दिन इसी में जल रहे थे। किसके पीछे दीवाने थे, किसके पीछे किसके 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 पीछे लगे हुए थे, किसके आगे, किसको रोक रहे थे, किसको टोक रहे थे, किसको मार रहे थे, सिर्फ देह के भान से, है ना। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव, यही हमारा जीवन था। इसकी वजह से हम परेशान थे। अभी बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, अब आपको समझना है कि आप तो आत्मा हो, आप तो मेरे बच्चे हो, और तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, और पिछले 84 जन्मों में जो आप कुछ आपने पिछले 63 जन्मों विशेष 24 जन्म 21 जन्मों में तो ज्यादा पाप नहीं किए, पाप किए ही नहीं, अक्रम कहलाए। पिछले 63 जब से देवान आया तब से आपने एक दूसरे के साथ गलत काम किए हुए, और वो सब हमारे आसपास है। सबसे ज्यादा कौन है आपके आसपास? आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके बॉस, आपके साथी, आपके पड़ोसी, जिनसे आपकी रोज लेन देन है ना, वही सबसे ज्यादा आपके साथ रहे हुए हैं। उनसे ही आपके ज्यादा हिसाब किताब रहे हुए हैं। इसलिए वो ही आप ये ना सोचो कि पेपर कहां और से बाहर से नहीं आने वाले। जो कुछ भी पाप किया आपने, उनके साथ पाप किए हुए हैं, ठीक है। और आप अब सीधे मार्ग पर लगने लग जाओ तो वो लगने देंगे क्या आपको? नहीं लगने देंगे। कहता अच्छा, अभी तो सोच हुए खा के बिल्ली हज को जा रही है, इधर आ जाओ। नहीं, तो आपको जो है क्योंकि पापक्रम आपके हमारे पापक्रम हमें खींचते हैं, नहीं तो पहले सत्य की समझ लो गहराई से, फिर सत्य की अवेयरनेस में निरंतर मनन रिवाइज करते रहो, चिंतन गहराई में जाओ। बाबा मुझे तो बनना है, मुझे तो ऐसा बनना ही है, मंथन बाबा कैसे बनना, मगन हो जाओ। और फिर जो मक्खन निकले सिमरण माना, उसको कार्य करते समय कार्य में लगाते रहो। बाबा ने कहा मुझे मुस्कुराते रहो, बस अच्छा बाबा ठीक है, बाबा मुस्कुराते रहो, बाबा कोई गाली दे रहा तो क्या करूं, अच्छा मुस्कुराता रहना, बच्चे ऐसे हो रहा है, बाबा पेट में दर्द हो रहा है क्या करूं, बच्चे मुस्कुराओगे ना तो अंदर एंडोर्फिन निकल आएंगे, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। कमर में दर्द हो रहा है बाबा क्या करूं, घुटने में दर्द, चलता हूं घुटने में दर्द होता है, बच्चे और ज्यादा याद करो, है ना, और एंडोर्फिन निकलेगा, आपका पेट पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। तो बाबा से मतलब बाबा आपको युक्ति बताता जाएगा, कुछ भी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बाबा ऐसे को क्या कैसे करूं, बाबा बस बच्चे मुझसे कंबाइन हो जाओ, मैं अपने आप ठीक कर दूंगा, बच्चे मैं मालिश कर देता हूं, चलो तुम्हारी, है ना। तो बाबा हर चीज कर देगा ना, प्रैक्टिकली कर देगा। तो अवेयरनेस से आपके फिर महसूसता आने लगेगी, महसूसता से आपके अंदर एक्सपीरियंस अनुभूति होने लगे, अनुभूति से फिर तृप्ति, फिर आपसे प्राप्ति होने लगी, गेन, क्या फायदा हुआ, सिर दर्द ठीक हो गया, हार्ट का दर्द ठीक हो गया, एसिडिटी ठीक हो गई, पेट का दर्द ठीक हो गया, घुटने का दर्द ठीक हो गया, प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, जो गोलियों से भी नहीं होती थी, गोली खाते थे दर्द की एसिडिटी बन जाती थी, अब इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे दर्द भी ठीक हो गया, साथ में एंडोर्फिन खुशी भी दे दी इसने, हल्का भी बना दिया, डबल फायदा हुआ। वो गोली खाता था पेन किलर तो मेरा एसिड बन जाता था, तबीयत खराब होती थी, और ही गैस बढ़ जाती थी पेट में, है ना, तो बीमारी तो बढ़ जाती थी ना, कि तो अभी इसमें तो हल्कापन आ गया, तो प्राप्ति महसूस हुई। अब रोज करते करते क्या तृप्ति आ जाएगी, तृप्ति माना संतुष्टता आ गई, अब बस बाबा से मिथम मिला, तृप्त हो गए, अब तृप्त हो गए तो खुशी आ गई तो शक्ति आ गई। समझिए सीक्वेंस। पर शुरुआत कहां से हुई, सत्य की समझ से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, फिर अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, और तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन विद द ट्रूथ, है ना, महसूस मना, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, सत्य को महसूस करो, सत्य को महसूस करेंगे तो फिर आपके अंदर, क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकल नहीं होता कुछ भी, थ्योरेटिकल नहीं होता, सत्य की समझ जब आई और आपने मुरली सुन ली, उसको यूज तो किया ही नहीं, फिर साधन अवेयरनेस, मनन चिंतन मंथन सिमरण अवेयरनेस, फिर उसके बाद महसूस करना, महसूस करने के बाद क्या करना, अनुभव, फिर अनुभूति होती है, अनुभूति, मैंने महसूस किया तो मुझे दर्द ठीक होना शुरू हो गया, है ना, मैंने बाप के साथ का अनुभव किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरा दर्द ठीक हो गया। मेरे मन में टेंशन थी, नींद नहीं आई थी, नींद आ गई। मेरे मन में विचार बहुत तेज चल रहे थे, विचार एकदम शांत हो गए। महसूस हुआ ना, अनुभूति आई, अनुभूति भी इतनी आई, बार बार करते करते प्राप्ति होने लगी, मन शांत रहने लगा। पहले बिजी बिजी लगता था, इजी लगना शुरू हो गया, है ना। अब क्या हुआ, प्राप्ति हो गई। अब जो करते अलग अलग संबंध, अलग समय पर अनुभव करते करते तृप्ति हो गई, तृप्ति आ गई तो अत्यंत सुख की अनुभूति आ गई, है ना। बाबा मेरे साथ है, ऐसे बाबा मेरे साथ थोड़ी ना अब लगता है। बाबा जब मुझसे बाबा का बार बार यूज करेंगे तो फिर लगता है बाबा मेरे साथ है ना। और फिर जो है, जब बाबा मेरे साथ है तो फिर क्या होता है, शक्ति आ गई, आठों शक्ति आने लगती है ना। तो अब इसको हम दूसरे रूप में लेते हैं। ये तो सब स्टेप समझ में आ गया ना आपको। अब जब ये शक्ति आ गई तो सेवा शुरू हो गई। अंग्रेजी में मैं इसको सात स्टेप में कहता हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, दूसरा अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, तीसरा रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, रियलाइजेशन माना महसूस करना, और फिर उससे आती है एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, फिर सत्य का अनुभव होता है, और उसके बाद एक्सपीरियंस करने के बाद हम सत्य बन जाते हैं। सत्य मतलब हम सत्यता का अनुभव करने लगते हैं, जिसे मैंने प्राप्ति शब्द कहा, और फिर हम बिकमिंग द ट्रूथ, सत्य बन जाते हैं। यह है क्या, कौन सी स्थिति, तृप्ति की स्थिति, बिकमिंग। एंड देन जब बन जाते हैं सत्य, जब लाइट आ जाती है मेरे अंदर, जब लाइट बन जाती है तो क्या होता है, अब लाइट कभी बोलते तुम जाओ इधर जाओ, इसको दो दे, इसको लाइट देना, इसको लाइट देना, भाई ये जो बेचारे के लाइट नहीं है, दे रहा है वहां पर लाइट, तुम जाओ, ऐसे बोलते ही क्या। फिर स्प्रेडिंग द ट्रूथ है ना, स्प्रेडिंग मना अपने आप फिर मनसा सेवा हो जाती है। फिर मेरे को यही चेहरा है, यही चलन है, यही कर्म है, आम देखना, देख चलन क्या है, देखना ही कर्म है, पढ़ना कर्म है, सुनना कर्म है, बोलना कर्म है, चलना कर्म है ना, इसे तो चलन कहते हैं। तो मेरा चलना भी कैसा हो जाएगा, उसके द्वारा भी सेवा होगी, देखने के द्वारा भी सेवा होगी। मैंने आपको देखा तो सेवा हो गई है ना, आपको फील हो गया शांति की किरणें आ गई है ना, शांति आ गई, मन बहुत अशांत था, शांत हो गया ना, ऐसा फील होगा नहीं होगा। तो आप किंतु कब कब होगा, जब अंदर शक्ति आ जाएगी तो नहीं, तो खुशी और शक्ति से खुशी आएगी, तो फिर आपका चेहरे पे जो भाव रहेगा और शक्ति जो होगी वो आपके द्वारा स्प्रेडिंग द ट्रूथ, सत्य फैल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, चेहरे और चलन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जो आत्मा के तीन सूक्ष्म शक्तियां, बुद्धि, मन और संस्कार। बुद्धि क्या है, बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं। पहला जो एस्पेक्ट है जिसको हम दिल कहते हैं, कहते हैं ना, एक तो दिल, ये फिजिकल दिल है ना, ये तो बॉडी का दिल है ना, जो धड़कता रहता है 24 घंटा धड़कता है, कभी बंद नहीं होता, हम सोते हैं ये तब भी चलता रहता है, ये तो फिजिकल दिल पंप है, डेड बॉडी में भी होता है। हार्ट तो डेड बॉडी में चलता नहीं है पर डेड बॉडी में भी होता है। किंतु जो आत्मा का दिल है वो यहां है, जिसको हम चेतना भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, हिंदी में अंतरात्मा भी कहते हैं, चेतना तो हिंदी में शब्द है। तो मेरी चेतना में क्या है, मेरी चेतना में क्या है, क्या है आपकी चेतना में। बाबा का ज्ञान मिलने से पहले मेरी चेतना में क्या था, मैं देह हूं ना, देह के संबंध संपर्क, देह का भान था, देह के संबंध संपर्क का भान था, देह के पदार्थों का भान था, देह के स्वभाव संस्कार का भान था। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मैं बहुत इमोशनल हूं, है ना, मैं बहुत ऐसा हूं, मैं बहुत ऐसी हूं, है ना, मेरे को बात बात पे रोना आता है ना, मेरे आंखों पे आंसू गंगा जमुना बहने लगती है ना, मेरे को किसी से मैं अपने मन की बात कह नहीं सकता हूं। यही था ना। तो ये जो है हमारे स्वभाव, जो देहवान के स्वभाव जो होते हैं, पांच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो यही मेरे अंदर भरे हुए थे, मेरी चेतना में, जैसे मेरे लिए जरूरी है ये क्रोध के बगैर काम नहीं चलेगा, लोभ के बगैर काम नहीं चलेगा, मोह के बगैर काम नहीं चलेगा, क्रोध के बगैर काम नहीं चलेगा, काम विकार के बगैर दुनिया कैसे चलेगी, है ना। यही मेरे अंदर ये स्वभाव नेचर, जैसे पानी के नीचे ठंडक है ना, आग के नीचे गर्मी है, तो ऐसे इसके कारण मेरे अंदर भरी पड़ी थी। और देहमान के संस्कार क्या है, आलस्य, आलस्य भरा पड़ा था। जैसे ही मौका लगे सो जाओ ना, मौका लगाओ, मौका लगा सो जाओ, रात को नींद आई नहीं, अब दिन में सो जाओ। देखो एक माता जी उधर सो रही है आराम से, है ना, एक उसके पीछे बहन भी सो रही है ना। तो हमें मतलब जो है अलर्टनेस है ना, जो देहभान का जो स्वभाव है, सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो आलस्य है। ब्राह्मणों का नंबर वन दुश्मन कौन सा है, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष देखना। आज घरों में संबंध खराब क्यों है, संबंध क्यों खराब है आपस में घरों में, क्योंकि पति को पत्नी में सारे अवगुण दिखाई देते हैं, और पत्नी को अपने पति में सारे अवगुण दिखाई देते हैं, पति को सारे अवगुण अपनी पत्नी में दिखाई देते हैं। गुण भी है उनके अंदर, तो गुण दिखाई नहीं देते, शादी के पहले गुण दिखाई देते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा है ऐसा। शादी होने के बाद 2 महीने बाद पूछो तो क्या होता है, आज सभी अनुभवी है ना, कुछ कुमारियों को छोड़ के, कुमार कुमारियों को छोड़ के, है ना, नहीं ऐसा होता, ठीक बात है गलत बात है, क्योंकि देहभान आया ना, जैसे देहभान आया ना, देहभान आया, देहभान आते ही अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ये देहभान का आदत है। क्योंकि शादी होने के पहले तो लगता है दो तारे हैं, दो सितारों का मिलन ना, वो सोचते हैं, और जैसे दो सितारे खत्म हुए, खत्म है ना, फिर तो देह आ गया ना, और देहभान आया तो फिर तो बीमारियां, फिर तो अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और थोड़े दिन में तलाक हो जाता है ना, तलाक चाहे कई लोगों का फिजिकली तलाक हो जाता है, कई लोगों को वैसे ही तलाक रोज ही रहता है ना। बंदर बंदरी वाला होता है ना, जब पुराना बंदर बंदरी दिखाने आते थे ना, बंदर का मुंह इधर को, बंदरी का मुंह इधर को, है ना, नहीं ऐसा ही होता है ना। तो यही घरों में रहता है आजकल ना, ये ज्यादा घरों में यही टेंशन रहती है। बच्चे आजकल इसलिए प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों की हेल्थ इसलिए खराब हो रही है, क्योंकि माँ बाप लड़ते रहते हैं सारा दिन, है ना, बचपन उसकी पालना होती ही नहीं बच्चों की, तो ना इसलिए बच्चों को आजकल बहुत साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, दर्शन मिलती नहीं है, बचपन से स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ओसीडी, ना कहा जाने कौन कौन साइकिक बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो हमारे माता पिता, हमारे माता पिता इस तरह के नहीं होते थे, हमारे हमने कभी माता पिता को लड़ते हुए नहीं देखा, माँ ने कहा कोई बात तो पिताजी ने हाँ कर दी, और पिताजी ने कहा तो माँ ने हाँ कर दी, कभी कंट्रास्ट नहीं देखा कि नहीं उसने कहा तो उसने काट दी। आजकल तो फैशन है बात को काटने का, पिताजी ने कहा तो माँ जरूर बात काटेगी, और माँ ने कहा तो पिताजी जरूर बात काटेंगे, है ना, जैसे किसी जन्म के जाने दुश्मन होते ना, इससे का व्यवहार है ना, नहीं तो ये वाला व्यवहार रहता है ना। तो ये जो सिनिसिज्म है ना, ये बड़ा, ये देव अगर हमारे अंदर अभी भी है, ब्राह्मण बनने के बाद भी, ब्राह्मण बनने के बाद भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, तो अभी भी हमारे अंदर देहभान है, अभी भी हम सच्चे ब्राह्मण नहीं बने, हाफ कास्ट ब्राह्मण ही है, राइट, अभी भी हमें दूसरों के अवगुण दिखाई दे रहे हैं, ये निशानी है, आलस्य अलबेलापन है, इसका मतलब अभी निशानी कि हम सच्चे ब्राह्मण नहीं बने, अवगुण बदलने की भावना किसी के प्रति है तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं बने, ठीक है। अगर हमें दूसरे पर शक होता है, अनुमान लगता है, तो हम सच्चे ब्राह्मण, ये हमारी आदत है, ये देहभान की चिंता और भय मन में है तो सच्चे ब्राह्मण नहीं बने हैं, ठीक है, हमेशा जल्दीबाजी रहती है, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मेरे को ऐसे ही होना चाहिए, क्यों, परमात्मा भी ऐसे नहीं बोलता है, तुम्हारे हिसाब से काम कैसे होना चाहिए, तो ये और ईर्ष्या द्वेष है तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं बने। कहते ना, अगर बाप के दिल में जाना है, बाप के दिल तक पे पहुंचना, तो 7 दरवाजे हैं, चक्र भी हो ना, माया का चक्र भी है, उसको अंदर करके ही तभी आप बाप के दिल तक पे जाके बैठ सकते हो। पहला है देहभान का दरवाजा, दूसरा है देह के संबंध संपर्क के भान का दरवाजा, तीसरा है देह के पदार्थों के भान का दरवाजा, चौथा है देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार के भान का दरवाजा, 5वां दरवाजा है नाम मान शान की चाह का दरवाजा, नाम मान शान, है इसकी इच्छा रहती है, नाम मान शान की इच्छा रहती है। मुझे लोग पूछे, ब्राह्मण परिवार में भी रहता है, लोग मुझे पूछे, है ना, पूछ वाला कौन होता है, इस पूंछ को आग लगानी पड़ेगी ना। और फिर ईर्ष्या द्वेष अगर है तो हम ये भी दरवाजा है, छठा दरवाजा। और सबसे लास्ट दरवाजा है आलस्य अलबेलेपन का दरवाजा। तो ये सात दरवाजे तोड़ने के बाद ही आप अर्जुन माना, ब्रह्मा बाबा ने सात दरवाजे तोड़े, और हम कहना उसके बच्चे अभिमन्यु, अभिमन्यु है क्या? नहीं, अभिमन्यु तो फंस जाएगा ना, जाके बाहर निकल नहीं पाएगा ना। तो हम भी मास्टर, हमें ब्रह्मा बाबा का एग्जैक्ट फॉलो करना है, तब हम सात दरवाजे तोड़ सकते हैं। तो हमें समझना है कि हमें जो है अपनी चेतना में, बुद्धि में सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, अर्थात इस मुरली की बुद्धि में कुछ और ना हो, बाबा और मुरली, क्योंकि दो ही सत्य हैं। अगर मेरे दिल में सत्य है, अगर मुरली, जितना हम मुरली का मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे तो उतना हम बाप की आज्ञाकारी बनते जाएंगे। बाप की आज्ञा है ना कि बच्चे मुरली का मनन चिंतन मंथन करो, यही अवेयरनेस जो बताया मैंने पहले, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, ये सत्य की समझ है, इसका मनरना अवेयरनेस है, और फिर उससे क्या निकलेगा, उससे पवित्रता निकलेगी। ज्ञान स्वरूप स्थिति क्या है, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और देवता स्वरूप का अनुभव होते रहना, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परमधाम वाला स्वरूप और आदि देवता, मेरा सत्य स्वरूप दो ही है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परमधाम वाला स्वरूप और देवी देवता स्वरूप, ये मेरा सत्य स्वरूप है, पावन सत्य प्रधान स्वरूप है, तो उसकी मुझे अनुभूति होती रहे, ये है सत्य, ये है सत्य ज्ञान स्वरूप स्थिति है ना। और जितना हम इसका प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते धीरे धीरे क्या होने लगता है कि हम जब अंदर से रिलैक्स रहते, मैं भी आत्मा, ये भी, मैं भी उस बाप की संतान हूं, ये भी उस बाप की संतान, चाहे मेरा पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दोस्त हो, पड़ोसी हो, सेंटर पे हम आपस में बहने रहती हैं, जब इस भाव से एक दूसरे को देखने लगते हैं तो हमें अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप की अनुभूति तो होती है, साथ में सामने वाले की भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप की अनुभूति होने लगती है, और हम सत्य की समझ से व्यवहार करने लगते हैं। इसको ही कहते हैं पवित्रता। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये पवित्रता आने लगती है, उतना अधिक डिग्री में आती है, पहले 5%, फिर 10%, 15%, 16%, 20%, उतना ही हम, उतना हमारा जो शुद्ध जो बुद्धि है, उतनी 10% शुद्ध बुद्धि के साथ हम असोचता बाप से कंबाइंड होने लगते हैं। तो हमारा कौन है, शिव बाबा कौन है, परम पावन है और असोचता है, कुछ सोचता ही नहीं है। सोचता है शिव बाबा कुछ, शिव बाबा को सोचता है क्या, असोचता है ना। तो हम भी असोचता बाप से कंबाइंड होने लगते हैं, क्योंकि पवित्र बुद्धि ही पावन बाप से कंबाइंड हो सकती है, और वो ऐसा सोचता है, तो असोचता बाप से कंबाइंड होता है तो पास का चिंतन खत्म हो जाता है, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है, और 90% विचार हमारे कहां से आते हैं, पास से आते हैं, अक्ष से आते हैं, अब 10% विचार रह जाते हैं सिर्फ, जो जरूरी विचार है वही रह जाते हैं। जब 10% रह गए तो कितने थे, पहले 30 विचार थे, अभी 3 ही विचार रह गए, तो क्या हो गया, इसको शांति कहते हैं, समझ में आई शांति। तो शांति बनाई आप, बन गई अपने आप, पवित्रता अपने आप बन गई कि बनाई, तो आपने बाप के ज्ञान के मनन चिंतन मंथन द्वारा ज्ञान का आपने क्या किया, बाप के साथ का अनुभव किया, हर संबंध से बाप का अनुभव किया, तो उसके द्वारा आपको, आपको अपनी 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 स्थिति भी महसूस हुई, दूसरे की महसूस हुई, अनुभव हुई, प्राप्ति हुई, प्यार बढ़ा, रिगार्ड बढ़ा, सम्मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, तो आप क्या हुआ, आपके अंदर पवित्रता आ गई, पवित्रता माना दूसरों को भी दिखाई, और लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो गया, क्या क्यों कैसे खत्म हो गया, परम धाम में अपने अपने निराकारी बाप से कंबाइन और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की शक्ति आ गई, तो पवित्रता पूरी आ गई ना, फुल पवित्रता आ गई, अब आप शांति शांति रहने लगी, अब पास का चिंतन खत्म हो गया, जो भी मिलता है सामने, इसने धोखा दिया कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का हिसाब, इसने मेरी इंसल्ट की कोई बात नहीं हिसाब किताब, इसने ऐसा किया कोई बात नहीं हिसाब किताब, सब पास का चिंतन खत्म, भविष्य की ना क्या होगा, फरिश्ता बने, सत्युग में जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, है ना, क्या प्रॉब्लम है। 90% विचार कट गए, नहीं कट गए, 10% ही रह गए। अब विचारों की स्पीड स्लो होती, क्या होता है, अब सबके गुण दिखाई देने शुरू हो गए, पहले क्या दिखाई देता था, प्यार क्यों नहीं था आपस में, अब गुण दिखाई देते थे, पवित्रता आई, आत्मिक भान आया, तो सबके गुण दिखाई देने शुरू हो गए, है ना। अब चाहे कितना भी गाली देने वाला भी है मेरे को, इंसल्ट करने वाला भी है, दुख देने वाला भी है, अब मैं सबको क्या करता हूं, बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान से उनको स्वीकार करता हूं। भगवान का प्यार कैसा है? आतंकवादी को भी इतना ही प्यार करता है जितना जितना किसको? सबको, हमको, है ना? क्योंकि वो दोनों एक शोले फिल्म का जैसे डायरेक्टर था ना, रमेश सिप्पी कौन था, जीपी सिप्पी, उसको ठाकुर से, धर्मेंद्र से, अमिताभ बच्चन से भी इतना ही प्यार था जितना गब्बर सिंह से प्यार था। नहीं, नहीं था क्या? गब्बर सिंह के बगैर शोले फिल्म चलती क्या? वो तुमने तब देखी जब ज्ञान में नहीं थे, तब देखी थी, उसके बाद तुमने फिल्में देखी नहीं। पर मेरे को एग्जाम्पल बहुत अच्छी लगती है कि अगर सबके लिए चाय मंगाता तो गब्बर सिंह के लिए चाय नहीं मंगाता क्या? नहीं, जितने भी बैठे थे, बैठे होते थे, तो सबके लिए चाय मंगाएगा, कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा, सबके लिए मंगाएगा, खाली गब्बर सिंह नहीं, गब्बर सिंह के लिए छोड़ो इसको, ये तो गंदा आदमी है, उसको भी देगा नहीं देगा? तो ये भगवान का प्यार है। प्यार कैसा है? जजमेंटल नहीं, ये तो व्यक्ति, ये ठीक नहीं है, इसको इसको इधर कर, इसको यहां से भगाओ, अच्छा बाकी रहो, नहीं, ये प्यार है ना? ऐसा प्यार है, मन सबको एक्सेप्ट करो, है ना? जब चारों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम जब अपना अपना अंतिम जो आदि ज्योति बिंदु सिर्फ आदि देवता से हमें आया, आदि देवता और दूसरे का भी समझ में आया, पढ़ा गई, तो पहला अपना ऐसे संतुष्ट हो गए क्योंकि हमने अपना एक्सट्रीम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और सामने वाले का भी दिखाई दिया तो हमने भगवान को खुश कर दिया, शांति आ गई तो हम रामाक से संतुष्ट हो गए, और हमने सबको स्वीकार कर लिया, सबको, तो क्या वो परिवार संतुष्ट हो गया? अब चारों चेंगे से एनओसी मिलने के बाद ही हम क्या हो गए? बुद्धि और मन पवित्र बन गए। अब ये सूक्ष्म, अब मुन्ने मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या है? कुछ और नहीं है, मन ही सूक्ष्म शरीर है, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है और संस्कार उसकी ड्रेस है। अगर हमारे दैवी गुण आते जा रहे, संस्कार मेरी ड्रेस चमकीली बनती जा रही है, और दिव्य बुद्धि रूप इंजन, दिव्य बुद्धि जो इंजन है सूक्ष्म शरीर का, इसमें बहुत सारा ज्ञान भर दिया, मनन शक्ति से ज्ञान भरते जा रहे, तो इंजन में बहुत पेट्रोल भर गया, अब एकदम यूं जाता है रॉकेट की तरह से, ठीक है, कहां पहुंच जाता है? कितनी देर में? एक सेकंड में सूक्ष्म वतन, माना बाप दादा की गोद में पहुंच जाता है, हम बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं, और फिर जाते ही ऐसा लगता है लाइट के शरीर में बाबा बैठा है, लाइट के शरीर में उसके अंदर सागर बैठा है, शिव बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता का, शांति का, शिव बाबा के दिल तक पर ब्रह्मा बाबा बैठा है, और ब्रह्मा बाबा के दिल तक पर शिव बाबा बैठा है ना, यही तो बाप दादा, यही तो सूक्ष्म वतन है, यही तो बाप दादा है, तो गोद में बैठ के सागर में पहुंच गए ना, तो बाबा मुझे बहुत प्यार से देखता है, बाबा मैं बाबा को बहुत प्यार से देख रहा हूं, लगता है सब कुछ मिल गया है ना, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति अनुभव हो गई, संतुष्टता आ जाती है, इच्छा मात्र अविद्या हो गई, आनंद आ गया, अब इच्छा खत्म हो गई तो लवलीन हो गए, आनंद आ गया, अब आनंद आ गया तो क्या हुआ, ये छह एनर्जी आ गई ना आपके दिल में चेतना में, तो अब सत्य को प्रकट शक्ति आ गई, क्योंकि आनंद को इसने टेस्ट कर लिया ना एक बार, बियॉन्ड चला गया देह और देह की दुनिया के बाहर, तो दुनिया के सब आनंद खत्म, सुख की फीलिंग खत्म है ना, अब कहीं बुद्धि लटकती नहीं, अब सत्य को परख लिया, विवेक जागृत हो गया, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल गई, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई, अब मन बुद्धि को देह और की दुनिया में, देह और देह की दुनिया में जब हमारी मन बुद्धि फंसी हुई थी ना, उसको सार में लाकर के बिंदी आत्मा बनके वहां से हम लोग मन बुद्धि को शुद्ध बना के और सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में समा गए, विस्तार से सार में समा गए, बाबा से बातें करते हैं, अपने रूढ़ियां करते हैं, है ना, फिर मां से भी मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बनके परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गए, करंट आने लगी, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद अंदर से रियल में महसूस होने लगा, करंट, बैटरी चार्ज होने लगी, बिंदी लगाने की शक्ति आ गई, अब शरीर में कर्म भोग आ रहा है, हार्ट की बीमारी हो गई, पेट में तकलीफ है, कैंसर हो गया, सहन करने की शक्ति आ गई, इतने सारे केमिकल्स निकलाए वो हीलिंग होनी शुरू हो गई, समाने की शक्ति आ गई, किसको बताने की आवश्यकता नहीं, अंदर अंदर समा दिया, सामना करने के लिए तैयार, और प्रॉब्लम का सहयोग करने के लिए तैयार है, तो विक्रम विनाश ऐसे नहीं होते हैं कि विक्रम विनाश ऊपर परम धाम में गए और वहां जाके बैठ के विक्रम विनाश करके आ गए, नीचे आके सब खत्म, ऐसे नहीं, रियल प्रैक्टिकल में फाइलें खुलती हैं, कई बार आप सोचते होंगे ना कि हम तो ऊपर आधा घंटा तो योग लगा के है ना, विक्रम तो विनाश ही नहीं हुआ, ना दर्द ठीक हुआ, ना कुछ ठीक हुआ, नहीं, वो रियल अनुभूति जब आप करेंगे तो आपका देखेंगे आपके ऐसे केमिकल्स निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे, आपको दर्द होगा ही नहीं बॉडी में, आपका दर्द ही खत्म हो जाएगा ना, तो ये जो है जब आपकी स्थिति हुई ना, तो एक्चुअली ये आठ शक्तियां, जो पहली दो शक्तियां तो होगी विवेक और निर्णय शक्ति, और अगली छह शक्तियों से चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है, ठीक है। ये सबकॉन्शियस, अब जब आपके दिल में सत्य है तो चित्त आपका क्या हो गया, शांत एकाग्र आनंदमय हो गया, और चित्त के आधार पर चिंतन चलता है कॉन्शियस माइंड में। अगर मेरे चित्त, मेरे दिल में अगर सत्य हो, असत्य हो, मैं देह हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं स्टूडेंट्स हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये पावर, इतनी बड़ी जान पहचान है मेरे पास, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो क्या होगा, क्या होगा, पवित्रता नहीं रहेगी, शांति खत्म, प्रेम खत्म, खुशी खत्म, आनंद खत्म, और विवेक कैसा हो जाएगा, कंफ्यूज, निर्णय शक्ति भ्रष्ट, छोटी राई राई भी पहाड़ बन जाएगी, समेटनी शक्ति खत्म, सहन होगा नहीं, समाया जाएगा नहीं, सामना होगा नहीं, सहयोग किसी करेंगे नहीं, तो क्या होगा, क्या होगा, चित्त अशांत, चंचल और बेचैन हो जाएगा। फिर कैसी कैसी कॉन्शियस माइंड में कौन सी फाइलें खुलेंगी, फिर कॉन्शियस माइंड में वही फाइलें खुलेंगी, कौन सी फाइलें खुलेंगी, तमो प्रधान फाइल है, लड़ने की, झगड़ने की, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको ऐसा करूंगा नहीं, ऐसा होगा नहीं होगा, तो फिर चिंतन मुरली का नहीं चलता है, मुरली सुनी थी, मुरली जेब में भी है, मुरली का चिंतन नहीं चलता, मुरली निकालने को दिल नहीं करता कि मुरली में देखो बाबू ने, बाबा ने क्या लिखा था आज, उसने क्या कहा था वो याद रहता, इसने क्या कहा था याद रहता, आज मोदी ने क्या बोला वो याद रहेगा, राहुल गांधी ने बोला क्या याद रहेगा, बाबा ने क्या बोला पता ही नहीं, वरदान क्या था पता ही नहीं, नहीं क्या ख्याल है। तो चित्त के आधार पर चिंतन, सच्चित, अब ये हमारी बुद्धि कैसे बनी, सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि बन गई, ब्राह्मणों के सच्चे ब्राह्मण की बुद्धि सच्चित आनंद स्वरूप होती है, दिल में सत्य होता है, चित्त आनंद स्वरूप होता है, और जिसका चित्त आनंद स्वरूप है उसका चिंतन जो है कैसा चलता है, पॉजिटिव चलता है, चित्त किसका, किसका सत्य क्या है, मुरली का मनन चिंतन मंथन चलता है, मुरली मन में बजती रहेगी, बाबा ने क्या कहा, अतिंद्रिय सुख तुम बच्चों का गाया हुआ है, किसका क्यों गाया हुआ है, क्योंकि तुमको ही भगवान पढ़ाते हैं, किसी को भगवान पढ़ाता ही नहीं है, तो नशा रहेगा, मैं भगवान का विद्यार्थी हूं, भगवान का स्टूडेंट हूं ना, तो मुरली का मनन चिंतन चलेगा, चिंतन चलेगा, और फिर संबंध से याद करें, बाप खाली बाप टीचर नहीं है, मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, हर समय हर जगह है, तो क्या होगा, अब आपकी भावना, संकल्प को बार बार करते हैं ना, तो भावना बन, संबंध के साथ तो भावना बन जाती है, और भावना से वाइब्रेशन, मेरे वाइब्रेशन बाबा तक टच करने लगते हैं, और बाबा कितने किलोमीटर दूर है, हैं? पता नहीं कितने किलोमीटर, खरबों अरबों किलोमीटर दूर होगा, और उसके वाइब्रेशन, वो बाबा कहता है तुम मुझे एक गुना याद करते, मैं हजार गुना याद करता हूं, तो बाबा मुझे, बाबा के वाइब्रेशन मुझे हजार गुना आते, तो क्या हुआ, अब बाबा मुझे जो, उसके वाइब्रेशन मुझे आ रहे हैं, मेरे वाइब्रेशन बाबा को जा रहे हैं, तो बाबा के तो हजार गुना है, छत्र छाया बन गई नहीं बन गई, बाबा तो इतना बड़ा हो गया और मेरे तो इतने से ही है ना, हजार गुना हो गया ना, छत्र छाया बना, और बाबा की जो कैच, अब बाबा कर रहा है मुझे, कैचिंग पावर आ गई, कैचिंग पावर आ गई ना, अब मैं सारा दिन इसी भावना में रहता हूं, बाबा बाबा बाबा, हर आते बाबा को करता रहता हूं, तो क्या होगा, अब मेरी वृत्ति बदल गई, सर्कल पूरा हो गया ना, एक बिंदु बना संकल्प, 10-20 बार किया तो बना, अब उसी भावना में रह रहा हूं सारा दिन, बाबा ही मेरा सब कुछ, बाबा तो मेरे साथ ही, बाबा मेरा सब कुछ कर लेगा, मेरे को परवाह नहीं है, मैंने बाबा को सब कुछ दे दिया, मैं हल्का हूं, कुछ भी नहीं है, बाबा जो कहे कर दूंगा, और कुछ नहीं करना, बस खाली हूं, इजी हूं बहुत, जैसे दादी जान की बोलती, मैं इजी, मैं कभी बिजी नहीं है ना, दादी कभी बिजी नहीं बोलती थी अपने आप, इजी हूं है ना, स्पेस आ गया ना, तो इस तरह से तो क्या वृत्ति बदल गई, रूहानी वृत्ति, बाबा से आपकी वृत्ति मिल गई, अब बाबा जिस वृत्ति से हम सबको देखता है, हम भी सबको उसी वृत्ति से, दृष्टि, हमारी दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदली तो वायुमंडल बदल गया, और वायुमंडल बदला तो हमारी परसेप्शन बदल गई, हमारे इंप्रेशन बदल गए, अभी हम सब लोग हमें फरिश्ते से दिखाई देने लगे, है ना, ये क्या हुआ, हमारे बिलीफ सिस्टम बदल गए, पहले हम सोचते राहु की दशा मेरे ऊपर है, शनिचर की दशा है, मंगल की दशा, अभी हम समझते हैं हमारे पास कोई दशा ही नहीं है, हमारे पे एक ही दशा है, बृहस्पति की दशा है ना, बाबा मेरे साथ, तो इस तरह से हमारे गहराई से अनुभूतियां होने लगती है, ठीक है, और जब ये होने लगती है तो क्या होता है, और फिर हमारे क्या होने लगता है, फिर हमारी ये वृत्ति बनने, ये स्मृतियां बदलने के बाद क्या होता है, स्मृतियां बदल गई, और स्मृतियां बदलने के बाद, और फिर ये रिकॉर्डिंग होने लगती है, संस्कार बनने लगते हैं, संस्कार बनने के बाद क्या होता है, अब संस्कार बन गए ना, अब संस्कार बन गए, अब इनसे वाइब्रेशन जाने लगते हैं, संस्कारों से फिर वृत्ति बनती है, वृत्ति से फिर दृष्टि बनती है, दृष्टि से फिर वायुमंडल बनता है, वायुमंडल से उल्टा भावना, और भावना से वाइब्रेशंस, अब ये है चेहरा, अब मेरा चेहरा बन गया ना, ये क्या बन गया, अभी म्यूजियम बन गया, अब यहां बैठे बैठे मेरे वाइब्रेशन तक जा रहे हैं, परम धाम से कनेक्टेड है, सूक्ष्म मतन से कनेक्टेड है बाबा के पास, और बाबा की जो कैचिंग पावर जो मैं ले रहा हूं, कैच कर रहा हूं, वो सबको टच कर रहा हूं। जो भी बाबा को किसी रूप में भी याद कर रहा है, चाहे वो आईसीयू में दाखिल है, कोरोना हो गया उसको, कोरोना के पेशेंट उसके रिलेटिव्स हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, जो भगवान याद करें उन तक मैसेज पहुंच जा रहा है, कहीं भी है, चाहे वो अमेरिका में हो, यूएसए में हो, चिली में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जापान में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको टचिंग होती है। तो ऐसे चेहरे के द्वारा आपके फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार सब जगह होता रहता है। रियल में उनको लगता है कोई फरिश्ता आया हमारे सिर पे हाथ और ऐसे चला गया, ठीक है। तो चेहरे के द्वारा, और चल माना कर्मों का, आपका आपका चलन, कर्म, देखने का तरीका, बोलने का तरीका, आप कुछ बोल से ही बोलेंगे ना, लगेगा हम कुछ आशीर्वाद देके गया, तो उसके द्वारा भी सेवा हुई ना। और आपके घर वालों का बदल आपसे मुश्किल ज्यादा है। आप अपने बच्चे को ज्ञान सुनाओ ना, बच्चा कहेगा पापा देखा है बहुत, आपको देखा है, रहने दो है ना, मम्मी आपको बहुत देखा है। कर्मों के द्वारा बच्चे बदलते हैं, कर्मों के द्वारा घर वाले बदलते हैं, चेहरे के द्वारा घर वाले बदलते हैं, ठीक है। घर वालों को बदलना मुश्किल, दूर वालों को बदलना मुश्किल है, ठीक है, पर घर वालों को बदलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो चेहरा और चलन घर वालों की सेवा करता है और दूर वालों की भी सेवा करता है, और इसके द्वारा बाप प्रत्यक्ष, अब मैं ट्रांसपेरेंट हो गया ना, कॉन्शियस मन भी खत्म, अनकॉन्शियस भी खत्म हो गए, सबकॉन्शियस भी खत्म हो गए, तैसे उनके पापक्रम खत्म हो गए। और पापक्रम कैसे खत्म, मैंने बताया, सहन करना पड़ता है, समाना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है। किनका सहयोग, किनका करना पड़ता है, जो हमारे साथ उल्टा करते हैं, ठीक है, जो हमारा सहयोग करते हैं उनके साथ करना ही पड़ता है, कि जिनको हमारे साथ उल्टा करते हैं उनको भी सहयोग, हेल्प करना पड़ता है। इसको बोलते हैं विक्रम विनाश करना। ओके, ओम, दो मिनट पा रहे हो, ¡Gracias!